एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, एकत्र ज्ञान गोष्ठी में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं हूँ आपकी पहली मेजबान।
और मैं हूँ आपका दूसरा मेजबान। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर।
हाँ, किताब का नाम है फिल्म संगीत यानी फिल्म म्यूजिक, और इसे लिखा है कैथरीन कॉलिनैक ने।
अब देखिए, विषय सुनने में शायद थोड़ा सा एकेडमिक सा लगे, फिल्म संगीत,
लेकिन जरा सोचिए, हम सब फिल्में देखते हैं, आजकल तो वेब सीरीज का जमाना है। कभी ध्यान दिया है कि इनके पीछे जो संगीत बचता है,
हाँ,
वो हमारे महसूस करने के तरीके को कैसे बदल देता है? मतलब ये सिर्फ गाने या धुने नहीं है।
बिल्कुल नहीं, ये तो कहानी कहने का एक बहुत ही पावरफुल लेकिन छुपा हुआ तरीका है। एक किरदार है जो पर्दे के पीछे से काम करता है। सही कहा, और कॉलिनैक की किताब इसी छुपी हुई भाषा के राज खोलती है। कैसे संगीत हमारे इमोशंस को जगाता है, कहानी को आगे बढ़ाता है।
और हमें पता भी नहीं चलता, हम बस महसूस करते जाते हैं। तो आज के दौर में जहां हम इतना मीडिया कंज्यूम करते हैं, ये समझना तो बहुत जरूरी हो गया है ना?
बिल्कुल, तो चलिए इस अनदेखी अनसुनी सी लगने वाली भाषा की गहराइयों में उतरते हैं।
हाँ, शुरू करते हैं लेखक से। कैथरीन कॉलिनैक, ये कौन है?
कैथरीन कॉलिनैक, जैसा मैंने बताया, रोड आइलैंड कॉलेज में प्रोफेसर हैं, अंग्रेजी और फिल्म स्टडीज पढ़ाती हैं।
और इनकी सबसे खास बात जो मुझे लगती है वो ये है कि इन्हें संगीत की भी गहरी समझ है और फिल्म की भी।
हाँ, ये कॉम्बिनेशन मिलना बहुत मुश्किल होता है। अक्सर या तो कोई फिल्म एक्सपर्ट होता है या म्यूजिक एक्सपर्ट।
सही, और कॉलिनैक इन दोनों दुनियाओं को ब्रिज करती हैं। उनकी एक और किताब है सेटलिंग द स्कोर, जो क्लासिक हॉलीवुड संगीत पर है, वो तो मतलब लैंडमार्क मानी जाती है।
उसे बहुत ही आसान भाषा में समझाती है।
हाँ, कोई भी समझ सकता है। वो सिर्फ ये नहीं बताती हैं कि देखो इस साल में ये हुआ, उस साल में वो हुआ, नहीं,
वो समझाती हैं कि संगीत फिल्मों में क्यों काम करता है, कैसे काम करता है, उसका असली रोल क्या है, उसका मकसद, उसका गोल क्या है।
बिल्कुल, वो हमें सिर्फ सतह पर तैरना नहीं बल्कि संगीत के अंदर गोता लगाना सिखाती हैं, एक तरह से एक्टिव लिसनिंग है ना?
हाँ बिल्कुल, जैसे हम सिर्फ सुन न रहे हो बल्कि समझ रहे हो
हाँ
कि अच्छा ये धुन क्यों आई, अभी इसका क्या मतलब है।
सही, तो अब आते हैं किताब पर।
भाई,
ये किताब आखिर है किस बारे में, इसका मेन पॉइंट क्या है?
देखिए, कॉलिनैक का सबसे बड़ा तर्क जो पूरी किताब में चलता है वो ये है कि फिल्म संगीत सिर्फ सजावट नहीं है, मतलब सिर्फ बैकग्राउंड में कुछ बज रहा है ऐसा नहीं है।
हाँ, सिर्फ माहौल बनाने के लिए नहीं।
हाँ, तस्वीरें जरूरी हैं।
वो इसे एक नैरेटिव एजेंट कहती हैं, मतलब कहानी सुनाने वाला एक एजेंट, एक किरदार।
हाँ, सोचिए जरा, संगीत हमें कितनी चीजें बता देता है बिना एक शब्द कहे। कौन हीरो है, कौन विलेन,
कब खतरा आने वाला है,
कब कोई रोमांटिक सीन चल रहा है, ये सब इशारे संगीत ही तो देता है।
और ये जानकारी कई बार ना तो डायलॉग में होती है, ना ही स्क्रीन पर दिख रही होती है। ये संगीत का अपना एक गोल होता है हमें वो बात बताना।
बिल्कुल, और किताब हमें ये समझने में मदद करती है कि इस भाषा को डीकोड कैसे करें। जैसे वो दो तरह के संगीत की बात करती हैं, डाइजेटिक और नॉन डाइजेटिक।
हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। डाइजेटिक मतलब?
डाइजेटिक हुआ वो संगीत जो कहानी की दुनिया का हिस्सा है, जिसे किरदार भी सुन सकते हैं। जैसे कार में रेडियो बज रहा है या कोई पार्टी चल रही है तो वहां गाना बज रहा है।
अच्छा, ठीक है, समझ गया। और नॉन डाइजेटिक?
नॉन डाइजेटिक वो बैकग्राउंड स्कोर है जो सिर्फ हम दर्शक सुनते हैं, किरदार नहीं सुनते उसे।
हाँ, जैसे वो टेंशन वाला म्यूजिक जब हीरो किसी मुसीबत में फंसने वाला होता है।
बिल्कुल, ये फर्क समझना फिल्म संगीत को समझने की पहली सीढ़ी है एक तरह से।
और किताब में लीड मोटिफ की भी बात है, वो छोटी सी म्यूजिकल थीम।
हाँ, जो किसी किरदार या आइडिया से जुड़ जाती है। जैसे ही वो धुन बजती है हमें वो चीज याद आ जाती है, जैसे वो स्टार वॉर्स में डार्थ वेडर की थीम है ना, वो एक क्लासिक लीट मोटिव है।
बिल्कुल, तो किताब हमें संगीत के इस पूरे सफर पर ले जाती है, इसके अलग अलग रोल और गोल्स को दिखाती है, मूक फिल्मों से लेकर आज तक।
हाँ, तो इसी सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं, अध्यायों के हिसाब से चलते हैं। पहले अध्याय में कॉलिनैक डाइजेटिक और नॉन डाइजेटिक का फर्क समझाने के बाद
एक बहुत बड़ा मिथक तोड़ती है,
वो ये कि मूक फिल्में यानी साइलेंट फिल्म्स साइलेंट थीं।
हाँ, ये तो हम सब सोचते हैं,
पर ऐसा था नहीं। उनमें बाकायदा लाइव संगीत बजता था, कभी पियानो, कभी ऑर्गन, कभी कभी तो पूरा ऑर्केस्ट्रा।
अच्छा, और ये संगीत क्या बस ऐसे ही बजता था?
नहीं नहीं, फिल्म के साथ क्यू शीट्स आती थीं, मतलब एक लिस्ट होती थी कि किस सीन पर कैसा संगीत बजाना है, खुशी वाला, दुख वाला, टेंशन वाला।
अरे वाह,
तो मतलब संगीत शुरू से ही कहानी कहने के लिए इस्तेमाल हो रहा था, उसका एक मकसद था।
बिल्कुल, सिर्फ खालीपन भरने के लिए नहीं, और उस दौर में भी डाइजेटिक और नॉन डाइजेटिक दोनों तरह का संगीत मौजूद था।
फिर आया दूसरा दौर आवाज का, साउंड आ गया फिल्मों में, खासकर 1930s के दशक में जब डबिंग तकनीक बेहतर हुई।
हाँ, तब नॉन डाइजेटिक स्कोर लिखने की पूरी आजादी मिल गई कंपोजर्स को, और यहीं से शुरू हुआ क्लासिकल हॉलीवुड स्कोर का जमाना।
मैक्स ट्रेनर, एरिच कॉनगोल्ड, ये बड़े नाम इसी दौर के हैं। किंग कॉन्ग का स्कोर याद है, या दी एडवेंचर्स ऑफ रॉबिन हुड?
बिल्कुल, और इस क्लासिकल स्टाइल की कुछ खास पहचान थी, जैसे लगभग लगातार संगीत बजना।
हाँ, पूरी फिल्म में
एक बड़ा सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा का इस्तेमाल, भावनाओं को बहुत साफ साफ बताना, मतलब संगीत सुनकर ही पता चल जाए कि क्या महसूस करना है।
लीट मोटिव का भी खूब इस्तेमाल होता था, और सबसे दिलचस्प चीज थी अश्रव्यता या इनऑडिबिलिटी।
अश्रव्यता, ये कॉन्सेप्ट कमाल का है ना?
मतलब संगीत अपना काम करे लेकिन दर्शक का ध्यान उस पे ना जाए।
हाँ, दर्शक कहानी में डूबा रहे, संगीत चुपके से अपना असर करता रहे, भावनाओं को गाइड करता रहे, ये हॉलीवुड की कहानी कहने के तरीके को बहुत स्मूथ और असरदार बनाता था। संगीत का गोल था अदृश्य रहना।
लेकिन फिर आया बदलाव का वक्त, दूसरे विश्व युद्ध के बाद माहौल बदला।
हाँ, क्लासिकल मॉडल को चैलेंज मिलने लगा, फिल्मों में अब जैज का इस्तेमाल होने लगा, जैसे मार्लन ब्रांडो की फिल्म थी ए स्ट्रीट कार नेम डिजायर।
हाँ, उसमें जैज था, और जैज उस वक्त की शहरी जिंदगी की बेचैनी, उलझन, नैतिक दुविधाओं को दिखाने का एक जरिया बन गया। ये उस भव्य ऑर्केस्ट्रा वाले संगीत से बहुत अलग था। और फिर आके है बर्नार्ड हामन, अल्फ्रेड हिचकॉक के साथ उनका काम तो जबरदस्त है।
ओहो, साइको, वो शावर सीन का संगीत, सिर्फ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स की वो तीखी चुभने वाली आवाजें।
हाँ, उसमें कोई मीठी धुन नहीं थी, बस छोटी तीखी डिस्कॉर्डेंट यानी बेमेल सी आवाजें। ये संगीत आराम नहीं देता था, बल्कि बेचैनी और डर पैदा करता था।
बिल्कुल, इसका मकसद ही दर्शक को अनकंफर्टेबल करना था, उसे किरदार के दिमागी हालत में खींच लेना था। ये संगीत अश्रव्य नहीं था, ये ध्यान खींचता था।
हाँ, इसने क्लासिकल रूल तोड़ दिया। फिर 60 और 70 के दशक में न्यू हॉलीवुड आया,
और यहाँ एक नया ट्रेंड चला संकलन स्कोर या कॉम्पिलेशन स्कोर का।
मतलब
फिल्म के लिए ओरिजिनल स्कोर बनाने की बजाय पहले से मौजूद हिट पॉप गानों को इस्तेमाल करना, जैसे द ग्रेजुएट फिल्म थी।
हाँ, साइमन और गैफंकल के गाने,
या इजी राइडर।
बिल्कुल, इसने न सिर्फ फिल्मों को एक नया फील दिया, बल्कि फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री के बीच का रिश्ता भी बदल दिया। साउंड ट्रैक एल्बम हिट होने लगे, लेकिन तभी एंट्री होती है जॉन विलियम्स की, जॉज का वो डरावना म्यूजिक, और फिर स्टार वॉर्स।
ओ, स्टार वॉर्स, जॉन विलियम्स ने एक तरह से क्लासिकल हॉलीवुड स्टाइल को जिंदा कर दिया, पूरा ऑर्केस्ट्रा, यादगार थीम्स, जबरदस्त लीटमोटिव।
हाँ, उन्होंने दिखा दिया कि वो पुराना स्टाइल आज भी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लिए कितना पावरफुल है। उसका गोल वही था, कहानी को भव्य बनाना।
और अब हम आज के दौर में हैं, जहां टेक्नोलॉजी ने सब कुछ बदल दिया है, सिंथेसाइजर आ गए।
ब्लेड रनर का स्कोर याद है, वेंजेलिस का, वो आइकॉनिक है।
हाँ, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक, डिजिटल सैम्पलिंग, आजकल के स्कोर अक्सर हाइब्रिड होते हैं, ऑर्केस्ट्रा भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक साउंड्स भी होते हैं।
संभावनाएं बहुत बढ़ गई हैं, कंपोजर्स के पास अब तरह तरह के टूल्स हैं अपनी बात कहने के लिए।
और इस पूरे सफर में कलीना ये भी दिखाते हैं कि संगीत कैसे फिल्म की शैली यानी जॉनर को डिफाइन करने में मदद करता है।
हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हॉरर फिल्म का संगीत सुनते ही हमें पता चल जाता है कि ये हॉरर है,
या रोमांटिक फिल्म का संगीत सुनते ही वो फीलिंग आ जाती है। हम दर्शक एक तरह से ट्रेंड हो जाते हैं इन म्यूजिकल कोड्स को पहचानने के लिए।
संगीत हमें बताता है कि हमें क्या महसूस करना है, किस जॉनर की उम्मीद करनी है।
और एक और जरूरी बल्कि थोड़ी सेंसिटिव बात भी किताब उठाती है, कल्चरल रिप्रेजेंटेशन की।
हाँ, कि कैसे कभी कभी संगीत का इस्तेमाल स्टीरियोटाइप बनाने या मजबूत करने के लिए होता है।
जैसे किसी खास कल्चर को दिखाने के लिए हमेशा एक खास एग्जॉटिक टाइप का संगीत बजा देना, ये दिखाता है कि संगीत सिर्फ आर्ट नहीं है, वो कल्चरल आइडियाज को भी रिफ्लेक्ट करता है, और कभी कभी बायस को भी।
बिल्कुल, इस पर ध्यान देना जरूरी है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो कुछ बड़े आइडियाज निकल कर आते हैं, है ना?
हाँ, बिल्कुल। पहला तो मेरे ख्याल से वही अश्रव्यता का विरोधाभास है।
हाँ, कि संगीत सबसे ज्यादा ताकतवर तब होता है जब हम उस पर ध्यान नहीं देते, वो चुपके से हमारे सबकॉन्शियस में काम करता है।
जैसे वो हॉरर फिल्म वाला उदाहरण, स्क्रीन पर कुछ हो न हो अचानक डरावना संगीत बजता है और हम उछल पड़ते हैं। संगीत का गोल ही यही है, बिना दिखे असर करना।
दूसरा बड़ा आइडिया है कि संगीत का मतलब कल्चर तय करता है, कल्चरली कंस्ट्रक्टेड मीनिंग।
हाँ, इसकी कोई एक यूनिवर्सल भाषा नहीं है। जो राग हमें शांत लगता है, हो सकता है किसी और कल्चर में उसका कोई मतलब ही ना हो।
हम अपने समाज, अपनी फिल्मों, अपने माहौल से सीखते हैं कि किस धुन का क्या मतलब निकालना है। ये सीखा हुआ व्यवहार है।
तीसरा पॉइंट जो मुझे अहम लगा वो है टेक्नोलॉजी और आर्ट का साथ साथ चलना।
टेक्नोलॉजी एंड एस्थेटिक्स।
बिल्कुल, जैसे जैसे रिकॉर्डिंग या साउंड मिक्सिंग की तकनीक बेहतर हुई, संगीत बनाने का तरीका, उसका स्टाइल सब बदला। सिंथेसाइजर ने नई दुनिया खोल दी।
टेक्निक नए रास्ते बनाती है और कलाकार उन रास्तों पर चलते हैं।
चौथा, और ये तो शायद सबसे जरूरी है, संगीत खुद एक कहानीकार है।
म्यूजिक इज नरेटर।
हाँ, ये सिर्फ मूड सेट नहीं करता, ये कहानी कहता है, किरदारों के मन की बात बताता है, आगे क्या होने वाला है उसका हिंट देता है।
ये फिल्म का एक एक्टिव पार्टनर है, इसका अपना एक रोल है, अपना एक गोल है कहानी में।
और आखिरी बात, संगीतकार अकेला नहीं है, वो एक टीम प्लेयर है।
कंपोजर एज कोलैबोरेटर।
सही कहा, उसे डायरेक्टर के विजन, एडिटर की कटिंग, कहानी की जरूरतें, सबके साथ मिलकर काम करना होता है। ये एक मिला जुला प्रयास है।
किताब में कुछ बातें तो ऐसी हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं। जैसे वो कहती हैं कि फिल्म संगीत सुना नहीं जाता, उसे चुपके से सुन लिया जाता है।
ओवरहर्ड।
वाह, ये लाइन बहुत गहरी है। मतलब हम पर असर हो रहा है और हमें कानों कान खबर नहीं।
बिल्कुल, या फिर ये कि हर फिल्म स्कोर दर्शकों को सिखाता है कि उसे कैसे सुनना है।
हाँ, हम फिल्में देख देख कर ही संगीत की इस भाषा को सीखते हैं। हर फिल्म हमें थोड़ा और ट्रेन करती है।
और ये भी कितना सही है, फिल्म में संगीत की गैर मौजूदगी भी उतनी ही जरूरी है जितनी उसकी मौजूदगी।
ओ हाँ, खामोशी कभी कभी सन्नाटा चीखने से ज्यादा डरावना होता है ना। किसी टेंशन वाले सीन में अगर संगीत अचानक बंद हो जाए,
दिल दहल जाता है।
बिल्कुल, और जॉनर वाली बात भी, शैली फिल्में, जॉनरा फिल्म्स सिर्फ संगीत परंपराओं का इस्तेमाल नहीं करती, वे कुछ हद तक उनसे बनी होती हैं।
हाँ, मतलब हॉरर फिल्म का हॉरर होना या रोमांटिक फिल्म का रोमांटिक होना, उसमें संगीत का बहुत बड़ा हाथ है, वो शैली का DNA है।
और आखिर में ये वाली बात मुझे बहुत दमदार लगी, फिल्म संगीत की ताकत इस बात में है कि वो मनमानी चीज को जरूरी, इनेविटेबल बना देता है।
मतलब थोड़ा समझाएंगे?
मतलब ये कि संगीत हमें ये यकीन दिला देता है कि जो भावनाएं हम महसूस कर रहे हैं या जो कहानी हम देख रहे हैं वो बिल्कुल नेचुरल है, ऐसा ही होना था, जबकि वो सब तो रचा गया है, बनाया गया है। संगीत उस बनावटीपन को छुपाकर उसे असली जैसा महसूस कराता है।
वाह, ये तो सच में कमाल की इनसाइट है। तो अब सवाल ये है कि इस सारी बातचीत का, इस ज्ञान का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या इस्तेमाल है?
देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि ये हमें बेहतर मीडिया लिटरेट बनाता है। मतलब हम मीडिया को ज्यादा समझदारी से कंज्यूम कर पाएंगे।
कैसे?
भाई, अब जब हम कोई विज्ञापन देखेंगे या कोई न्यूज रिपोर्ट या फिल्म, तो हम थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे कि अच्छा, यहाँ ये संगीत क्यों बज रहा है, क्या ये मुझे कुछ खास महसूस कराने की कोशिश कर रहा है।
हाँ, क्या ये मेरी भावनाओं को मैनिपुलेट करने की कोशिश तो नहीं कर रहा, ये जागरूकता जरूरी है।
बिल्कुल। दूसरा फायदा, ये फिल्म देखने के हमारे अनुभव को और गहरा बना सकता है।
हाँ, ये तो है, अगली बार जब फिल्म देखेंगे तो शायद कान थोड़े ज्यादा खुले रहेंगे संगीत के लिए।
हाँ, ध्यान देंगे कि कैसे अलग अलग किरदारों के साथ अलग थीम बज रही है, कैसे टेंशन बढ़ रही है तो संगीत बदल रहा है। इससे फिल्म को अप्रिशिएट करने का एक नया डायमेंशन खुल जाता है।
सिर्फ कहानी नहीं, कहानी कहने का तरीका भी समझ आने लगता है।
और तीसरा, जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं, फिल्म मेकर्स, राइटर्स, गेम डिजाइनर्स, यहाँ तक कि हम जैसे पॉडकास्टर्स भी,
हाँ,
उनके लिए तो ये सीखने के लिए बहुत कुछ है।
हाँ, कि आवाज और संगीत का इस्तेमाल कैसे अपनी कहानी को और ज्यादा असरदार बनाने के लिए किया जा सकता है, भावनाओं को कैसे जगाया जाए।
बिल्कुल, साउंड डिजाइन का महत्व समझ आता है।
तो अंत में अगर मैं अपनी बात कहूं तो मेरे लिए इस पूरी चर्चा से सबसे बड़ी सीख ये रही कि फिल्म संगीत, जिसे हम अक्सर बस यूं ही ले लेते हैं, वो वाकई कहानी कहने का एक कितना सूक्ष्म और शक्तिशाली जरिया है। और ये जानना कि ये हमारे अवचेतन पर काम करता है, ये थोड़ा डरावना भी है और मजेदार भी।
हाँ, और मेरे लिए सबसे अहम बात ये रही कि संगीत कभी भी न्यूट्रल या सिर्फ बैकग्राउंड नहीं होता। हर नोट, हर इंस्ट्रूमेंट, हर चुप्पी एक चॉइस है, एक स्टेटमेंट है, और उसका एक मकसद है, एक रोल है फिल्म के मतलब को बनाने में। हमें सिर्फ पैसिव दर्शक नहीं, एक्टिव श्रोता बनने की जरूरत है।
हाँ, और एक बात मेरे दिमाग में आ रही है, आजकल जैसे फिल्मों और सीरीज में म्यूजिक का इस्तेमाल इतना मिक्स हो गया है, कभी पुराने गाने, कभी एकदम नया इलेक्ट्रॉनिक साउंड, कभी ऑर्केस्ट्रा। आपको क्या लगता है, क्या संगीत का कहानी कहने का जो बेसिक रोल है, जो गोल है, वो बदल रहा है, या वो बस नए जमाने के साथ तरीके बदल रहा है पर काम वही कर रहा है?
ये सोचने वाली बात है। शायद तरीके बदल रहे हैं, लेकिन कहानी को इमोशनल गहराई देना, दर्शक को गाइड करना, वो कोर रोल शायद अब भी वही है। क्या कहते हैं?
हाँ, हो सकता है। इस पर सोचना दिलचस्प रहेगा।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।